साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा जी कि आप पेन सोच नहीं सकते हैं कि जब आप अपना लव्ड वन खो देते हैं तो उसकी कैसे होती है। और ये जो इन्होंने सपोर्ट की थी, ये जो लेकर आई थी मोशन काउंसलर पॉल एंसली, और उन्होंने कहा था कि ये फुटबॉल स्टेडियम जो है इसको रीनेम करने की जरूरत है। और वो कहने लगी ओलिविया चाओ के जो फोर्ड फैमिली का दुख है वो मैं समझ सकती हूं, और अगर आपकी फैमिली में कोई आदमी मर जाता है प्री मेच्योरली या ऐसे चला जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है। आपको पता ही है कि उन्होंने भी ही शी ऑल्सो लॉस्ट हर हस्बैंड फॉर्मर सिटी काउंसलर एंड फेडरल एनडीपी लीडर जैक लेटन की ये वाइफ हैं, जो कैंसर से जिनकी डेथ हुई थी 2011 में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही थी, और ये बड़े अरसे से एजेंडा के ऊपर था, और 2017 से ये कोशिश की जा रही थी कि स्टेडियम को जो सेंटेनियल पार्क में है इसको में जो है वो कहा जाए रॉब फोर्ड के नाम पे, तो वो हो नहीं रहा था। तो आज इन्होंने जो है उसको पुष्टि दी है, और उन्होंने कहा जी कि रॉब फोर्ड जो है बड़े ही अच्छे बंदे थे, और कैंसर बड़ा रेयर कैंसर था, और ही डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 46 इन 2016। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। अमरीका के अंदर जी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अब जो इसराइल के साथ दोस्ती और पैलेस्टाइन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाजें जो हैं ज्यादा बुलंद होने लगी हैं। आज कोई 100 के करीब स्टाफ मेंबर्स जो हैं यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ओपन लेटर साइन किया है टू सेक्रेटरी अलेजांद्रो मेरोकस, और उनको कहा है कि ये जो वॉर गाजा में चल रही है इसको डिनाउंस करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट डिपार्टमेंट है वैसे तो वो इमीडिएटली जब भी कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं या कोई इस तरह की जो किलिंग्स होती हैं जिसमें कि ओवर 18,000 लोगों की डेथ होगी जैसे पैलेस्टीनियंस की गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर, तो उसके ऊपर फौरन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक ब्रीफ तैयार करता है और प्रेसिडेंट से बात करता है। लेकिन अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, विच शोज के आपको ब्लाइंड आए आपने दिखाई हुई है बॉम्बिंग्स जो हो रही हैं रिफ्यूजी कैंप्स में, हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस पे, सिविलियंस के ऊपर, और इसकी तरफ हमको देखने की जरूरत है। ये जो सिग्नेटरीज हैं तकरीबन 139 जो लोग हैं वो तो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं, इसके अलावा जो इसकी मैनेजमेंट एजेंसीज हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, सिटीजनशिप एंड कस्टम्स सर्विसेज, इन सब के ऑफिशियल्स ने भी साइन किया है, लेकिन बिल्कुल एनोनिमसली साइन किया है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमको जॉब के अंदर बैकलैश आ जाता है। तो वो कहते हैं जी कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट डिपार्टमेंट का होना चाहिए वो बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, और ये जो हमको सोचना चाहिए कि अगर हमने इस चीज को एंडोर्स किया तो इसके रिपरकशंस जो हैं वो क्या होंगे। तो ये जो है आज अमेरिका में बात हुई। इसके अलावा व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, वो आज सऊदी पहुंचे हुए हैं जी, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं, और दूसरे भी बहुत सारे जो दूसरे सऊदी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं, मगर मेन मुलाकात जो थी उनके साथ थी, और उसके बाद फिर दूसरे ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने मुलाकातें की। और इन्होंने कहा जी कि हम इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक सस्टेनेबल पीस लेकर आना चाहते हैं, और इसके अलावा उन्होंने आपस में सऊदी ऑफिशियल्स के साथ आपस की जो दोस्ती है और उसकी बात की ताकि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है रीजन के अंदर बना रहे। इसके बाद उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर जो इसराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि जैसे कि बाइडन साहब ने कहा है कि आप इंटरनेशनल सपोर्ट खोते जा रहे हैं, ये जो इतना ज्यादा आप सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग्स कर रहे हैं गाजा में, तो उस सिलसिले में आपको सोचना पड़ेगा। जेक सलिवन ने ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इन गाजा जो है वो भी सऊदी ऑफिशियल्स के साथ जो है खासतौर पर एमबीएस के साथ जो है डिस्कस किया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो क्रिटिकल एड है ये वहां तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सऊदीज को बताया कि ये जो हूथी अटैक्स हो रहे हैं इंटरनेशनल कमर्शियल वेसल्स पे रेड सी में उसको भी रोकने की जरूरत है। तो आज इसका मतलब है कि चीजें बिगड़ रही हैं अरब वर्ल्ड और अमरीका के बीच में, वरना इतने ऑफिशियल्स बैक टू बैक जो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं यूएस के वो ना आते। अच्छा, हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने एक सीज फायर के लिए जो है वो इसराइल को कहा है, और जो ये हाउस था 193 मेंबर्स का, इसमें 153 मेंबर्स ने कहा था कि सीज फायर की तरफ जो है आप लेके जाए। इसके अंदर अब प्रेशर जो है बिल्ड किया जा रहा है न्यूजीलैंड पे। हमने आपको पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड ने कहा था कि ये जो हॉस्टिलिटीज वहां पे चल रही हैं इनको बिल्कुल एंड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेफ जगह सिविलियंस के लिए गाजा गाजा में अब नहीं रही है। इसके अलावा बाइडन साहब ने भी, हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जो किलिंग्स और डेथ्स और खासतौर पर जो बच्चों की डेथ्स यहां पर हो रही हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो हो रही हैं, उसके लिए इन्होंने कहा था कि आपको बहुत केयरफुली अटैक करना पड़ेगा, इसराइल को कहा था बाइडन ने। और उन्होंने कहा जी कि इसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं, खासतौर पर बच्चे, उनकी डेथ्स होती जा रही हैं। और बाइडन साहब ने यह भी कहा था कि यह एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, जो इस वक्त इसराइल की हिस्ट्री में ऐसी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कभी नहीं आई, और ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे बल्कि उसको डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। और उन्होंने नतन्याहू को कहा था कि तुम्हारे जो गवर्नमेंट के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन यीवर है, इसको निकालने की जरूरत है। तो और क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसराइल ने फ्लैटली इसको रिफ्यूज किया था कि हम लॉन्ग टर्म सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे। इसमें अब जो बाकी लोग भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो हमने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जो स्पेनिश लीडर हैं पेड्रो सैंचेज, उनके साथ जो कुछ अरब ऑफिशियल्स ने बात की थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कि क्लियरली यूरोप को इसके ऊपर बोलने की जरूरत है, और हमास को डिफीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है पैलेस्टाइन की, उसको जो है बेतहाशा सफरिंग उसकी बढ़ाई जाए। आज के अंदर आयरिश प्राइम मिनिस्टर लियो वरादकर जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने यूरोपियन यूनियन के जो मेरे पार्टनर्स हैं उनको मैं कहता हूं कि आपने सारी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है, क्योंकि आप कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले सक रहे हैं, कोई यूनाइटेड पोजीशन नहीं बना सक रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। आज तो हद यहां तक इतना इन्होंने जुल्म जो है वो दुनिया की अब नजरों में आ गया इसराइल का पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट, कि आज तो पोप फ्रांसिस जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इमीडिएटली सीज फायर की तरफ जाया जाए और इस चीज को जो है फौरन रोका जाए, ये जो इतनी ज्यादा किलिंग्स की जा रही हैं, खासतौर पे जो बच्चे मर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा छोटे, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन जाहिर है दूसरे लोगों के लिए भी, लेकिन इसके लिए भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने आज जो हैं रिपब्लिकन्स, उन्होंने आज ऑथराइज किया है इम्पीच करना बाइडन साहब को, और उन्होंने कहा जी कि ये मैटर इन्वेस्टिगेट करने की और ज्यादा जरूरत है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो भी इस पर बिठाई हुई है उसके ऊपर कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में बाइडन साहब का कुछ मिसकंडक्ट भी सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि जी हम इम्पीचमेंट की तरफ लेके जाएंगे। 221 में से 212 पार्टी लाइन वोट्स जो थे वो आज रिकॉर्ड किए गए, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है बाइडन साहब को पेनल्टी अल्टीमेटली देने की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि हाई क्राइम्स और मिसडिमिनर जो है उसका की वजह से आपको ऑफिस से निकाला जा सकता है और कन्विक्ट किया जा सकता है इन यूएस सेनेट ट्रायल। बाइडन साहब जो हैं उन्होंने, ये हाउस रिपब्लिकन जो हैं, इनकी प्रायोरिटीज के ऊपर आज बात की। उन्होंने कहा कि इनकी क्या प्रायोरिटी है सवाए इसके कि मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट इंक्वायरियां बिठाना, बजाय इसके कि जो चीजें अमेरिकन की लाइफ को बेटर कर सकती हैं उसके ऊपर गौर करने के बजाय ये जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं और ये कॉन्स्टेंटली मुझे अटैक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। और उन्होंने कहा जी कि इनका जो काम है वो ये है कि जो अर्जेंट काम इनको करने के हैं वो मुश्किलें लोगों की आसान करना है, और ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस तरह के बेसलेस पॉलिटिकल स्टंट्स चला चला के, और कांग्रेस जो है उसके पास अभी तक कोई फैक्ट्स भी नहीं आए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जो है अगर इसका दायरा बढ़ गया तो ये 2024 में भी जाएगा, जबकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी हैं और बाइडन साहब ऑलरेडी री इलेक्शन बिड जो है वो करना चाहते हैं ट्रंप साहब के अगेंस्ट। हालांकि आपको पता है कि ट्रंप साहब जिस वक्त प्रेसिडेंट थे अमरीका के, तो उनको ट्वाइस इम्पीच किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाइडन साहब को भी, उनकी फैमिली खासतौर पे उनके बेटे जो हंटर बाइडन हैं, उनकी जो डीलिंग्स हैं बिजनेस डीलिंग्स दुनिया में, उसके लिए वो कहते हैं जी के मे भी हो सकता है कि बाइडन साहब भी उसमें इन्वॉल्व हुए, जबकि बाइडन साहब कहते हैं कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाउस रिपब्लिकन्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर हमको एक जो है थरो इन्वेस्टिगेशन लाने की जरूरत है। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। नान एंड कबोब भी अपनी नई लोकेशन पे आ गए हैं, 5042 सेटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3 पे। इनका नंबर है 4162858191। अगर आपको इनके साथ ऑर्डर डालना है तो आप डाल सकते हैं। एंड जनाब, चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, बहुत जबरदस्त यहां पे जो है 32 रूम लग्जरी होटल है, 1400 लोगों का आप यहां पे इवेंट कर सकते हैं, अपना बिजनेस का या अपना पर्सनल। तो अगर और आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823। एंड ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विच इज विलेज टेस्ट, तो आप नासिर चिट्ठा साहब के पास ऑर्डर डाल सकते हैं। ये पहले थे मिसेस सागा के अंदर, अब ये आ गए हैं ओकविल में भी, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल, और इनका नंबर है 905226 2294 کے اوپر اگر آپ آرڈر ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا جی, ہمارے جو سپہ سالار صاحب ہیں پاکستان کے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب, آج وہ اپنے ماسٹرز کو ملنے کے لیے ادھر یو ایس اے میں ہمارے نیبرہڈ میں آئے ہوئے ہیں. ان کی آج ملاقاتیں جو ہیں یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس لوئڈ آسٹن صاحب سے پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے. ان دونوں نے جو ہے ریجنل سیکیورٹی اور بائی لیٹرل ڈیفنس اور جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر کہا کہ ہم ریجنل سیکیورٹی ڈیفنس کے اوپر بات کر رہے ہیں اینڈ آن اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ جس کے خلاف پاکستان بہت لڑ رہا ہے اور کانسٹنٹلی پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. مارچ میں بھی ان کی ایک ہائی لیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ ہوا تھا ان کے بیچ میں, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیررزم جو ہے اس کا ہم دونوں ہی کنٹریز کو خطرہ ہے, تو اس کے لیے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام ہم وہاں پہ چلا رہے ہیں تاکہ لا انفورس کیا جا سکے اور جو وکٹمز ہیں ان کو جسٹس دی جا سکے. تو اس کے اوپر آج جو ہے بڑی ان کی آپس میں گڑی گڑی باتیں ہوئی ہیں. اب اور کیا باتیں ہوئی ہیں وہ تو اب رب ہی جانتا ہے. جو ماجد بھائی کہتے ہیں چھپڑ کی باتیں ہم کو نہیں معلوم. بہرحال یہ آج جی خبر آئی ہے. پی ایم ایل این جو ہے جی اس نے آج بے تحاشا کریٹیسائز کیا ہے پھر سے پی ٹی آئی کو. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر پھر سے بہت زیادہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک پوری کانسپریسی چلا رہے ہیں تاکہ فیبرری 8 2024 کو الیکشنز نہ ہو سکیں. یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو پلی تھی اس کے فیور میں جو ہے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہائرنگ ہو رہی ہے ڈی آر اوز کی اور آر اوز کی فرام بیوروکریسی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جس وقت 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہ بیوروکریسی جو تھی اس نے رسپانسبلٹی لی تھی سارے ڈی آر اوز کو لینے کے لیے, اور یعنی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز ان کو کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت تو پی ٹی آئی نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا تو اب کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ایک کانسپریسی کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کانسپریسی کی تھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اگینسٹ. یہ ملک کے اندر ایک کرائسس لانا چاہتے تھے اور اکنامیکلی پاکستان کو اسٹرانگ نہیں یہ چاہتے ہیں, تو اس لیے جو ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں پاکستان کے اکنامک پرابلمس ختم ہوئے. تو آج شہباز شریف صاحب نے پھر سے عمران خان اور ان کی پارٹی پہ بہت سارے الزام لگائے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پی 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 کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کسی بھی پارٹی کا نام لیتے ہوئے کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے لارجسٹ پارٹی ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہے تو پھر اس کو پولز میں ڈیلے وہ کیوں کروا رہی ہے, پھر تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل خان مروت, آپ کو پتا ہی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کو یہ دیا گیا تھا عہدہ, اور ایک تو انہوں نے ڈیفائی کیا تھا اپنا ڈیٹینشن بائی پولیس, لیکن آج ان کو اریسٹ کیا گیا ہے آؤٹ سائڈ لاہور ہائی کورٹ فرام جی پی او چوک انڈر پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر اینڈ آرڈیننس سیکشن 3, اور ان کو اب ان نون پوزیشن کے لوکیشن کے اوپر اب شفٹ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مروت کا جو اریسٹ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ جو لوگ پاور کے اندر ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو پاپولارٹی ہے اس سے ڈرتے ہیں, اور یہ ملک کے اندر کمپلیٹ لانیسنیس بھی شو کرتی ہے. ان کو جو پکڑا گیا ہے یہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل ہے تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے الیکشنز نہ کروائے جائیں, اور نہ صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں مروت صاحب کو چھوڑیں بلکہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو پکڑا ہوا ہے اس کو فوراً چھوڑا چاہے تاکہ ملک جو ہے حقیقی آزادی کی طرف چل سکے. کچھ دن پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی عمران خان صاحب کو ہٹاتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کو بنایا گیا تھا, تو گوہر علی خان صاحب نے بھی ان کے اریسٹ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو اس سے پہلے بھی ڈیٹین کیا گیا تھا جسٹ لیس دین اے ویک کے پی کے بٹکھیلا کے ایریا کے اندر, لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. پارٹی یہ کہتی تھی ان کو ڈیٹین کیا ہے, پولیس نے اس کو ڈینائی کیا تھا. بہرحال جی آج ان کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے جناب آج اسلام آباد میں بڑا ہی شاندار نیشنل ٹریفکنگ ان پرسن ٹپ ہاٹ لائن جو ہے وہ آج لانچ کی ہے تاکہ اگر کسی کو بھی پتا چلے اور کسی کو بھی کوئی دیکھے یا خود کوئی وکٹم جو ہے اگر کمپلین کرنا چاہتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر تو وہ فوراً یہ نمبر 1112477786 جو ہے وہ دبا سکتا ہے, اور اس کو پھر جو وکٹم ہے اس کو جو پولیس اسٹیشن کنسرنڈ ہے اس کی طرف ریفر کیا جائے گا, اور وکٹمز کو بھی ادھر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیجا جائے گا. یہ آج تقریب جو ہے یہ ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوئی ہے, اینڈ دس ایکچولی ہیز کریٹڈ ہسٹری ان پاکستان, کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی ادارہ تھا نہیں جس میں ہیومن ٹریفکنگ کا آپ شکایت کر سکتے تھے. یہ جو ادارہ کھولا گیا ہے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں آسٹریلین ہائی کمیشن کی مدد سے الانگ ود آئی ایل او انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے یونائیٹڈ نیشنز کی, और जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है उसके साथ मिलकर ये खोले हैं। यहां पे आज जो सेरेमनी थी उसके अंदर मौजूद थे ये सारे लोग ही, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के कमीशन से भी और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड जो क्राइम है वो भी, आईएलओ के भी, यूएस पॉलिटिकल एडवाइजर और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ एफआईए, ये सारे आज इस जगह पे मौजूद थे। अच्छा, जब हिंदुस्तान के अंदर जनाब चीजें जो हैं जरा थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ जाती हैं, आज आपको पता ही है कि एक पेरिस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट है मीडिया पार्ट, जस्ट लाइक इंटरसेप्ट, ये भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर आते हैं। आज की इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट जो है फ्रेंच जजेस की जो राफेल डील के ऊपर जो रिक्वेस्ट थी कि इसमें बड़ा करप्शन हुआ था, अलेज करप्शन हुआ था, जब ये 36 डसॉल्ट बिल्ड राफेल तैयारे बेचे गए थे इंडिया को इन 2016 फॉर 7.8 बिलियन यूरोज, तो उसके ऊपर इन्होंने एक प्रोब बिठाई थी और उन्होंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ जो है अभी तक कोई भी इसके अंदर मिलके हमारे साथ नहीं चल रही है। इमैनुअल लिनैन इन्होंने जो कि उस वक्त जो थे फ्रेंच अम्बेसडर थे इंडिया में, जुलाई 25 को एक नोट उन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा था कि फ्रेंच हमारे जो जजेस हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर परेशान है कि ये जो करप्शन के सारे इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके साथ अभी तक कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही और लॉन्ग डिलेज कर रही है और बड़ी इनकम्प्लीट मैनर में इनके साथ चल रही है। दो फ्रेंच जजेस जो थे उन्होंने नवम्बर 2022 को चार्जेस लगाए थे अलेजली फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन सस्पेक्टेड करप्शन, इन्फ्लुएंस पेडलिंग और फेवरेटिज्म। जो अम्बेसडर लेनैन थे उन्होंने कहा जी कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉर्चुनिटी अब एक्सप्लोर करेगी G20 की एंटी करप्शन समिट के अंदर जो कि अगस्त 11th और 12th को कोलकाता में होनी थी, लेकिन लगा कि उस वक्त भी फ्रेंच गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकी। ये जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है ये कहती है कि लगता ऐसे है कि इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट दोनों के पास ही इतनी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि वो इसको रोल आउट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर इल्जाम जो है 3 हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट्स के ऊपर आएगा, जिसमें कि खुद मोदी जी शामिल होंगे, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रों और इनके जो प्रेडिसेसर हैं फ्रैंकवा होलांद वो भी शामिल इसके अंदर होंगे। इन अक्टूबर 2018 फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि ये डसॉल्ट से रिलेटेड जो एक आदमी है सुशन गुप्ता, बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल डिफेंस बिजनेसमैन है, जिसको के अरेस्ट किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने इन अलेज्ड ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के अंदर, वो फिर से ये जो डिसॉल्व रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का ये जो सारा किस्सा है इसके अंदर वो इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो थी ये डील जो थी ये हुई थी डिसॉल्व और रिलायंस ग्रुप के बीच में, विच इज रन बाय बिलियनियर अनिल अंबानी, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो है इसके अंदर जो इन लोगों ने हमें पता चला है कि जैसे अलेज करप्शन हुई है। फरवरी 2019 में मोदी गवर्नमेंट जो थी उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था डसॉल्ट का इसके अंदर जो एंटी करप्शन क्लॉजेस थी राफेल डील की वो सारी की सारी हटा दी थी जस्ट अ डे बिफोर साइनिंग द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंच फर्म जो थी उसके पास 49% स्टेक था और 51% स्टेक जो था रिलायंस डिफेंस के पास था। तो जो फ्रेंच जजेस हैं वो कहते हैं जी कि अंबानी जो हैं उन्होंने जब ये डील की तो उन्होंने फ्रांस में 2015 में टैक्स रिडक्शन के लिए फिर फाइल किया था, जिसके लिए कि ये चीज ये शो करती है कि इसके अंदर अलेजली मोदी जी, मैक्रों, हॉलैंड, सुशन गुप्ता और अनिल अंबानी सारे के सारे इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और हम इसकी बेस पे पहुंचेंगे। तो आज जनाब ये बड़ी खतरे में नाक रिपोर्ट आज फिर मीडिया पार्ट ने जो है ये इंडियन गवर्नमेंट पे छापी है। अच्छा जनाब, आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो जो रिवोक किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 के जम्मू और कश्मीर पे, उसको स्टे किया था कि हम उसके साथ खड़े हुए, हम उसको नहीं हिलाएंगे, उसके ऊपर आज जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने मोर रिस्पॉन्सेज दिए हैं दुनिया में जो उसके ऊपर एतराज आए हैं। सबसे बड़ा एतराज तो OIC ने उसके ऊपर किया, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने, और उन्होंने कहा था जी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने यह भी कहा था कि यह इलीगल और अन और यूनिलैटरल जो मेजर्स लिए हैं हिंदुस्तान ने अगस्त 5, 2019 को एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड स्टेटस के ऊपर, ये ठीक नहीं है। मियां के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जो हैं, उन्होंने कहा जी कि हम जो है, यानी कि इंडिया जो है, ओआईसी की ये स्टेटमेंट बिल्कुल रिजेक्ट करती है, ये इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड है। और नाम न लेते हुए उन्होंने कहा जी कि ओआईसी जो है वो ये सारी बातें कर रही है एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एन अनरिपेंटेंट प्रोमोटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टेट के कहने के ऊपर। जाहिर है कि क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं, प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, शायद आपको समझ में ना आए तो हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि उसके बिहेस्ट के ऊपर ये सारा कुछ करता है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स जब ओआईसी देती है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करती है। ओआईसी जो थी उसने कहा था कि नहीं, ये जो है हमको सॉलिडेरिटी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ दिखानी है क्योंकि उनके ऊपर बे इंतहा जुल्म हुए हैं। मियां का जिस वक्त ये बयान आया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की जब से जब ये बयान आया, तो चाइना जो है, चाइना भी भड़क गई। चाइना ने कहा जी कि जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन जो बॉर्डर है जो चाइना के साथ लगता है, इट बिलोंग्स टू चाइना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो बात की है जिसके के अंदर उन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको हिंदुस्तान का और इसका कश्मीर का हिस्सा दिखाया है, ये यूनिलैटरली और इलीगली इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। चाइना की जो पॉलिसी है इसके ऊपर बहुत हमेशा से क्लियर कट है, हम चाहते हैं कि सारे मसले पीसफुली रिजॉल्व किए जाएं, इंक्लूडिंग कश्मीर का मसला अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। लेकिन चाइना जो है वो भी ये इसका जो इन्होंने 370 को रिवोक किया है उसको नहीं मानता है। इसके होते हुए जो जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महमूदा मुफ्ती साहिबा जो है, उन्होंने भी आज बड़ी स्ट्रांग वर्डेड एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को ऑक्यूपाइड जो लोग हैं उनकी तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है रादर देन सिटीजन्स, और ये जो है ये फीलिंग जो है ये बड़ा ग्लूम पैदा कर रही है इस रीजन के अंदर। इंडियन कंपनीज जो हैं उनको बड़ी बड़ी बिड्स दिए जा रहे हैं कि कश्मीर के जो ट्रेजर्स हैं, खासतौर पर जो लिथियम की माइंस हैं, उसके अंदर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके फायदे जो हैं कश्मीरियों को नहीं हो रहे, सारे के सारे फायदे जो हैं आउटसाइडर्स को जा रहे हैं। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। और जनाब आज 99th बर्थ एनिवर्सरी मनाई हिंदुस्तान के अंदर द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राज कपूर साहब। और राज कपूर साहब आपको पता ही है, बड़े कमाल के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। और ये अपनी जो इनकी पहली फिल्म थी जिसके के अंदर ये अपीयर हुए थे, उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, मूवी का नाम था इनकलाब 1935 में। ये बहुत ही आइकॉनिक फिल्म स्टार पृथ्वी राज कपूर के बेटे थे, और ही स्टार्टेड एज अ क्लैपर बॉय फॉर फेमस बॉम्बे टॉकीज इन द लेट 1930s। और उसके बाद इनको बहुत कोशिश के बाद बड़ा मेजर फिल्मों में जो रोल पहला मिला था वो 1947 में जो फिल्म आई थी नील कमल ऑपोजिट मधुबाला, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था जो इनको मिला था। फिर 1948 में एट द एज ऑफ 24 इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो आर के फिल्म्स इस्टैब्लिश किया था, एंड एज अ रिजल्ट ही बिकेम द यंगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ हिज टाइम। और इनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था आग से इन्होंने किया था, जिसमें कि ये खुद थे और नरगिस थी, कामिनी कौशल थी, प्रेमनाथ थे। और इनका जो काम था बड़ा आइकॉनिक था, बड़ा दबंग था, डरते नहीं थे किसी से, और जिस तरह का इन्होंने दबंग काम किया वो जो ये यंग नेशन थी उसने फिर उसको फॉलो किया, और अब वो पूरे कपड़े उतार चुके हैं बॉलीवुड आपको पता है जो इन्होंने फिल्में बनाते थे, बड़ी बोल्ड फिल्में बनाते थे, तो जो है वो मुझे लगता है इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है बाकी जो है फिल्म इंडस्ट्री शायद। नहीं, मैं ऐसे मजाक कर। अच्छा जनाब, डेंजल वॉशिंगटन जो है आपको पता ही है, ये भी बड़े आइकॉनिक स्टार हैं हॉलीवुड के, लेकिन इनके खिलाफ आज लोग जो हैं बहुत ज्यादा इनको बैश किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो बड़े ही जो लेजेंडरी ट्यूनिजियन जनरल था हैनिबाल बारका, उसके ऊपर जो है ट्यूनिजियंस ने एतराज किया कि एक ब्लैक एक्टर जो है उसको आपने कैसे, इसके लिए बेशक बहुत बड़ा स्टार होएगा लेकिन आपने उसको कास्ट कैसे किया। वो कहते हैं जी कि ये जो कार्थेजियन जनरल था जो कि बड़ा फेमसली जिसके बारे में कहा गया था कि इसने एक आर्मी ऑफ वॉरियर्स एलिफेंट्स के साथ लेके एल्प्स को क्रॉस करके रोमन रिपब्लिक को चैलेंज किया था इन सेकेंड प्यूनिक वॉर, और जो थे ये इनका जो लाइनेज वो कहते हैं, जी कि ये फिनिशियंस थे, यानी फिनिशिया उस वक्त जो था वो उस वक्त का अब जो है ये ट्यूनिजिया है, तो वो कहते हैं जी कि ये फिनिशिया का जो था ये जनरल था, और विच इज 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सिसली, और इसको तो हमेशा से वाइट सेमेटिक फैमिली मैन, क्योंकि सेमेटिक फिनिशियन सेमेटिक फैमिली को ये बिलोंग करता था, उसके साथ हमेशा इसको जो है टाई अप किया गया था। तो अब एक ब्लैक आदमी को आप अगर इसका रोल करने के लिए कहेंगे तो ट्यूनीजिया की गवर्नमेंट ने कहा कि ये फॉल्स है, ये हिस्ट्री को खराब करने की कोशिश है, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनएथिकल। तो आप जो हैं ये ब्लैक अफ्रीकन हिस्टोरिकल एरर जो है वो करने के लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने आज अपनी ट्यूनीजिया ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी कहा है कि आप नेटफ्लिक्स के साथ जो है एहतजाज करें, ये ठीक नहीं है, हमारा जो बंदा सी काला नहीं सी गई वो ए कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पायन है बड़ी रेसिस गल तुसी की थी, इस तरह की गल नहीं करी तुसी, ये देखो कितना वड्डा स्टार है ऐसे। और जनाब जो हिंदुस्तान की मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी, उनको कहा गया था कि कुछ कुछ औरतों को पीरियड्स के बीच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, तो आप पीरियड्स की एक पेड लीव जो है वो अनाउंस करें। अब जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे ऐसा, गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करेगी। तो इस उत्ते फिर जड़ी ये साड़ी बाजी किस तरह चुप रहती, कंगना रनावत ने इसके ऊपर जी अपना बयान दिया, क्योंकि आपको पता ही है कंगना रनावत तो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है हिंदुस्तान के अंदर, हर चीज के ऊपर उनका ओपिनियन होता है ना जी। तो वो आ गई जी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी के ऊपर फिर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म फिर जब आया तो कंगना रनावत जी उनकी सपोर्ट के अंदर आ गई। उन्होंने कहा जी कि औरतें शुरू से काम करती आई हैं, चाहे उनकी कमिटमेंट्स हैं फैमिलीज के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए, ये एक मिथ है कि वर्किंग वुमेन जो है वो होती हैं डिफरेंट देन अदर वुमेन। हर औरत जो है वो काम करती है, चाहे फार्म्स में काम करती है, चाहे बच्चों को रेज करती है, चाहे घर में काम करती है, तो अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है पीरियड्स के लिए उसको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इलनेस नहीं है। वैसे मेक सेंस है जी, तो ऐसे आज उन्होंने ये कहा। और जनाब सोनू निगम साहब जो हैं उन्होंने आज हमारे एक पाकिस्तानी सिंगर उमर नदीम को सॉरी बोला। सॉरी इसलिए बोला कि इनका अभी एक गाना जो है वो आया है दो दिन पहले, सुन जरा, और सुन जरा जिस वक्त रिलीज हुआ तो उमर जो हैं वो तो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन इंडिया, क्यों हमारी कॉम्पोजिशंस आप चोरी कर रहे हो, क्योंकि उनका जो सॉन्ग था एग्जैक्टली उसकी ट्यून ऐसे ही थी। तो सोनू निगम जो है उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पे कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, एंड आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, मुझे तो रिक्वेस्ट किया था कमाल आर खान ने जो कि दुबई के अंदर मेरे नेबर हैं, और मैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सका, वैसे तो मैं हर किसी को हां भी नहीं करता, लेकिन अगर मैंने उमर का वर्जन सुना होता तो मैं कभी भी ये गाना गाने को तैयार ना होता जिसमें कि कॉम्पोजिशन उमर की चोरी की गई है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं, हालांकि मेरा कसूर इसमें नहीं है। ठीक है जी पायन ए गाले। और जनाब हॉकी कनाडा के लिए जो दो स्पॉन्सर्स जिन्होंने पुल कर ली थी अपनी सपोर्ट, एक टैलेंस और एक टिम हॉर्टन्स, वो आज आ गए हैं वापस। वो कहते हैं जी कि हम चाहते थे कि यहां पे स्पोर्ट्स को सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, और यहां पे हम अब देख रहे हैं कि कैनेडियंस का कॉन्फिडेंस इसमें हॉकी कनाडा में वापस आ गया, और इन्होंने बड़ी सब्सटेंशियल
जूनियर हॉकी
के लिए। तो वो कहते हैं जी कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का जो स्कैंडल लास्ट ईयर आया था उसकी वजह से हमने ये हटाई थी अपनी स्पॉन्सरशिप, लेकिन अब जो है हम अपनी स्पॉन्सरशिप इनको वापस दे रहे हैं। तो पायन ये वापस आई, अच्छी खुशी की खबर है, बड़ा पैहा दे दें, बड़ा पैहा दे
दें।
और जनाब आज हमारे बच्चे को नसीम शाह को आज लोगों ने बड़ा ही उसके ऊपर आज क्रिटिसाइज किया और उसको एतराज किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 के लिए उसके दो भाइयों को भी रोप इन कर लिया है। यूनाइटेड ने रोप इन किया है, पेसर्स हैं ये भी, हुनैन जो 20 इयर्स के हैं और उबेद इसका जो दूसरा भाई है उनको भी। और जो हुनैन है उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले लास्ट दो साल से वो खेल रहे हैं, और उबैद जो है उन्होंने तो एक्सेप्शनल टैलेंट शो किया है अंडर 19 एशिया कप जो इस वक्त चल रहा है उसके अंदर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसी एक ही जो फ्रेंचाइज है जो कि यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें तीनों भाई इकट्ठे जो हैं वो एक ही साइड पे खेलेंगे PSL में। आज मीडिया के साथ ये लाहौर में बात कर रहे थे और लोगों ने कहा जी कि शायद नसीम शाह साहब आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया अपने भाइयों को लाने के लिए PSL में, तो उन्होंने कहा जी कि मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूं, और मैं जो है किसी को जो है टीम में नहीं ला सकता, और ये जो है इन्होंने खुद से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और इनको सिलेक्ट किया गया है, तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है,
छोड़ो बंदू
है जी, मेरे मेरी जान छोड़े हैं जी। और जनाब आज से शुरू हो गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट टेस्ट, इसके अंदर आज बड़े फायर वर्क्स देखेंगे। आपको पता ही है डेविड वार्नर जिनके ऊपर बड़े एतराज आए थे पिछले दिनों में, कुछ जाहिर है कुछ स्कैंडल्स आए थे इनके सामने, उसके ऊपर 37 हालांकि इनकी ईयर्स एज है, लेकिन इनको फिर माफ किया गया था, इनको वापस लाया गया था। आज थे जनाब इन्होंने कमाल की था, 111 बॉल्स पे 164 रन इन्होंने बनाए, एंड ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ यू नो द फर्स्ट इनिंग्स इज 346/5। उस्मान खाजा जो थे वो आउट हुए 41 पे, मार्कस लेबुशेन 16, स्टीव स्मिथ 31, ट्रेविस हेड 40 के ऊपर। और जो पाकिस्तान की तो आपको पता है ट्रेडिशनल जो गंदी किस्म की फील्डिंग है वो चलती रही, खाजा को इन्होंने ड्रॉप किया उसका कैच 21 पे, अब्दुल्ला शफीक साहब ने वो भागते हुए गए और कैच पकड़ नहीं सके, वार्नर जो है उनको भी 108 के ऊपर आउट किया जा सकता था अगर उसका भी कैच पकड़ लिया जाता, लेकर उसको भी जनाब ड्रॉप किया गया। उसके बाद खुर्रम शहजाद साहब जो थे वो ये कैच नहीं पकड़ सके और जो है उन्होंने फिर उसके बाद 164 बनाए, एक बार उनको फिर एक और भी चांस मिला था 141 पे, फिर भी इनको आउट किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो विकेट कीपर हमारे सरफराज अहमद साहब थे उन्होंने पता नहीं क्यों स्टंपिंग करने से वो चूक गए, तो वो भी नहीं की। बहरहाल जी बड़े चांसेस मिले वार्नर को और गंदी हमारी फील्डिंग चलती रही।
टेस्ट क्रिकेट है,
ये टेस्ट क्रिकेट है,
किसी ने वार्नर को बताया कि टेस्ट क्रिकेट है, वही
164
रन बना रहे हो।
हाँ जी हाँ जी, दिस इज नॉट फेयर,
दिस इज नॉट फेयर, दिस इज
अरे खेलो यार, पांच दिन खेलना है, मतलब एडी दिनों की पसूड़ी पई हुई है, मारते मारते मार, छक्के दे छक्का, छक्के दे छक्का,
किसी ने उसको बताया नहीं,
नहीं किसी ने बताया नहीं, उसको लग रहा है ये T20 हम खेल, पागल हो जाए वार्नर, बिल्कुल अन्ने वाक खेल रहा सी जी वार्नर, असी पटीशन लेके आनी है कि भाई तू अन्ने वाक क्यों खेल रहा से, तुमने क्यों अन्ने वाक खेला है, हम नाराज है तुमसे, तुम इतने खराब क्यों हो, ये T20 चल रहा है, ये 5 डे का मैच है, जरा चैन से
खेलो, आराम से खेलो,
आराम से खेलो यार,
सेंचुरी बना लेना, आराम से बनाओ यार,
5 दिन में बनाना ना, अभी 2 तुम्हारी इनिंग्स पड़ी है, एक ही इनिंग में तुमने सारा काम पूरा कर लेना है, व्हाट इज दिस, हम नहीं खेल रहे। और जनाब कल हमने आपको बताया था कि उस्मान खाजा साहब को उनके जूते के ऊपर नहीं लिखने दिया गया, वो जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करना चाहते थे, जिसमें कि वो लिखना चाहते थे कि जो है फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स एंड ऑल लाइव्स आर इक्वल, और इनको बड़ा वो दिया गया था जो है वार्निंग दी गई थी आईसीसी की तरफ से और क्रिकेट कनाडा की तरफ से भी, लेकिन इन्होंने नहीं, सॉरी क्रिकेट कनाडा नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आज इन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट शो करने के लिए काली पट्टी पहन के ये जो है आए मैदान के अंदर, और अगर इनको आईसीसी सैंक्शंस कर देता तो ये फील्ड में ही नहीं आ सकते थे और इनको फिर फाइन भी किया जा सकता था 75% ऑफ मैच फी और भी कोई सजाएं दी जा सकती थी। बहरहाल जी ये कहते हैं कि जी मैं एज सून एज पॉसिबल आईसीसी की इस रूलिंग को मैं चैलेंज करूंगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हर बंदा जो है वो फ्री है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं एडल्ट हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं और विद इन रूल्स जो है, मैं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है मेरी फ्रीडम है। और वो कहते हैं जी जब मैं पैलेस्टीनियंस का सोचता हूं तो मुझे अपनी 2 बच्चियां याद आती हैं कि मेरी अगर 2 बच्चियां इस पोजीशन में पैलेस्टाइन की अगर होती तो मेरा क्या हाल होता और मेरी बच्चियां जो है वो कैसी होती, तो इसलिए मैं फील करता हूं पेन पैलेस्टीनियंस के लिए, तो इसलिए जो है वो मैं ये करना चाहता था मगर मुझे करने नहीं दिया गया। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, आपने देखी होगी इनकी बहुत सारी फायरवर्क्स जो उन्होंने चलाई थी अभी वर्ल्ड कप के बीच में, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया के अंदर चल रही है उसके ऊपर इन्होंने बात की। आपको पता ही है कि बींग अ मुस्लिम इनको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था जब इंडिया की बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी पाकिस्तान के हाथों T20 वर्ल्ड कप 2021 में दुबई के अंदर, जब 10 विकेटों से हारा था हिंदुस्तान, तो उसमें कहा गया था कि शमी ने जानबूझ के गंदी बॉलिंग की है। अभी जब ये चल रहा था वर्ल्ड कप का मैच तो उसके अंदर इन्होंने 24 विकेट्स ली थी जो कि हाईएस्ट थी, ही वाज द टॉप विकेट टेकर इन 7 मैचेस, और फिर ये जो थे सजदा करना चाहते थे जब इन्होंने 5 विकेटें ली थी श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में वर्ल्ड कप में मुंबई में, लेकिन बस ये बैट के ऐसे झुक गए थे, पूरा सजदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये चीज वायरल हो गई थी और इनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज हुआ था। तो आज जब ये इंटरव्यू एक दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर मैं सजदा करता भी तो उसमें क्या रॉन्ग है, और जो है मुझे सजदा करने के लिए अगर किसी की परमिशन चाहिए है तो मैं फिर ये जानना चाहता हूं कि मुझे इस कंट्री में रहना ही क्यों है।
वो
बिग स्टेटमेंट,
बिग स्टेटमेंट,
ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਸ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠਾ ਗੋਲ ਅੱਲਾ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਓ
یہ تھی ہماری آج کی نیوز اینڈ بقیہ کی نیوز ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی
نیوز نہیں ہوتا مجھے تو نیوزیں ہوتا ہے نیوزیں
نہیں یہ لاسٹ کی نیوز جو ہے نا وہ
بہت ساری نیوزیں
تھینک یو سو مچ
ان
شاء اللہ تعالیٰ اینڈ اب میں آپ کو لے چلوں گا پروگرام ان پروگرس وتھ زیشان احمد زیشان احمد آپ کو انٹرٹین کریں گے اسی نمبر پہ اسی جگہ پہ ٹھہرے رہیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یو ہیو اے لاٹ آف انٹرٹینمنٹ بقیہ کی باتیں ہوں گی کل انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ حافظ
Thank you. क्या दिल समझता नहीं, हम परेशान हैं दिल के अंदाज से। दिलों को सपनों से भर दिया, सुनी सुनी इन आँखों को सपनों से भर दिया, आँसुओं से तूने मुझको दूर कर दिया, आँसुओं से तूने मुझको दूर कर दिया, अपनी हर एक खुशी को तूने, अपनी हर एक खुशी को तूने मुझ पे वार दिया, अपनी हर एक खुशी को तूने मुझ पे वार दिया, के बिन तेरे सांसों ने चलने से इनकार किया, प्यार ने तेरे हाँ प्यार को मेरे तू है जिंदगी की तरह अब तो मेरे वास्ते, तू है जिंदगी की तरह अब तो मेरे वास्ते, तड़पूं मुझे हक है, तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है। हक है
नहीं अच्छी, दिल को समझ।
शुक्रिया तेरा कहा जो मना मेरा शुक्रिया तेरा कहा जो मना मेरा आजा अब आके बाहों में समाना आजा अब आके बाहों में समाना
क्या बोले रे मिलकर क्या